गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। समय सार परमगम का कर्ता क्रम अधिकार चलता है, जिसमें अपन कल 83-82 गाथा तक आ गए थे, और अपन को 83-84 और 85 गाथा जो है उसकी चर्चा करनी है। अभी अभी जब मैं इस पर बैठ गया तब मोटानी जी ने एक प्रश्न किया आते ही कि आप प्राप्त विकार और निर्वृत्त कर्म को समझा रहे थे, तो ये तो पुद्गल की बात है, इसमें आत्मा का क्या लेना देना। एक बात तो यह कि मैंने जो उदाहरण दिया था व्यापार का कि जैसे कि गेहूं पैदा करना, फिर उसमें परिवर्तन करके बिस्कुट बनाना और फिर उसे खरीदना बेचना, ये तीन प्राप्त विकार और निर्वृत्त कर्म के उदाहरण है। तो उन्हें लगा कि ये तो पुद्गल की बात हुई है, ये तो उदाहरण देके समझाया था, और यहाँ पर भी जो सिद्धांत की बात है उसमें भी पुद्गल कर्म ही है कि ज्ञानावरण आदि जो पुद्गल कर्म हैं, तो वो कारमान वर्णा से बनते हैं। तो कारमान वर्णाएं तो इस आत्मा ने पैदा नहीं की, इसलिए आत्मा उनका उत्पादक कर्म नहीं करता नहीं है। फिर वो कारमान वर्णाएं जो कर्म रूप परिणमित होती है, तो आत्मा ने वो काम भी नहीं किया, इसलिए विकार विकारक नामक जो कर्ता होता है वो भी आत्मा नहीं है। और तीसरा जो पुद्गल कर्म बन गया ना कारमान वर्णा से, तो उसे भगवान इस आत्मा ने ग्रहण भी नहीं किया, इसलिए प्राप्त कर्ता के रूप में भी कर्ता नहीं। ये तीन बातें हो गई ना, तो यही तो सिद्ध करना है कि पुद्गल कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है। और कर्ता क्योंकि तीन प्रकार के होते हैं, एक उत्पादक कर्ता, एक विकारक कर्ता और एक प्राप्त कर्ता, और तीनों ही चीजें आत्मा के साथ पुद्गल कर्म की घटित नहीं होती हैं। ये पुद्गल की बात तो है, लेकिन यहाँ पौद्गलिक जो कारमान वर्णाएं हैं उनका प्रकरण चल रहा है। यद्यपि इस बात को हम सारे पुद्गलों पर भी घटित कर सकते हैं, तो जो एक कर्म की बात थी और मैंने जो उदाहरण दिया था वो नो कर्म का था, प्राप्त विकारो कर्म नहीं है, खरीदना बेचना तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी अपन शरीर पर घटित करें तो ये शरीर नो कर्म है, और अंदर में एक कारमान शरीर है वो द्रव्य कर्म है, तो कारमान शरीर पर घटित किया है, अपन नो कर्म पर भी घटित कर सकते हैं कि इस पौद्गलिक शरीर को जो नो कर्म है आत्मा ने पैदा नहीं किया, आत्मा ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और आत्मा ने इसे प्राप्त भी नहीं किया। यदि प्राप्त कर लिया होता तो फिर देह जुदा आत्म जुदा ये कैसे रहता, जब ये जुदा ही बना हुआ है तो प्राप्त नहीं किया ना। तो इस तरह से सारे पुद्गल के साथ आत्मा का कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इस निष्कर्ष पर आचार्य पहुंचे हैं। तो फिर कहा हमारी समस्या क्या है कि वो पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। आचार्य कहते हमारी समस्या ये नहीं है, हमारी तो ये है कि आत्मा फिर किस बात का कर्ता है। देखो दो में बहुत अंतर है नितिन भाई, उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ इस बात को। क्या मैं जयपुर में रहता था, अभी भी रहता हूँ, बहुत पुरानी बात है, 40 वर्ष पुरानी बात, कि आदर्श नगर के मंदिर में दो मुमुक्षु भाइयों में इस बात पर झगड़ा हो गया कि ये जो खाना खाता है ये कौन खाता है, शरीर के आत्मा। और मैं बड़े मंदिर में प्रवचन करने जाता था, तो वहां से लौट के आते थे गोदगा जी हम साथ में ही, तो वो गोदगा जी मुझे छोड़ने के लिए यहाँ तक आते थे स्मारक तक। तो स्मारक में वो मंदिर के सामने दोनों भाई बैठे हुए थे, और उन्होंने आते ही कहा था हमने झगड़ा हो गया है आपसे निपटारा करने के लिए आए। मैं बोलो भाई क्या है, एक खाना कौन खाता है, जीव के पुद्गल। मैंने कहा चलो अभी खाना तैयार है तो अपन खा के देखते हैं कि कौन खाता है। پھر بعد میں چرچا کریں گے کہ نہیں نہیں صاحب آپ مزاق کرتے ہیں. پھر دیکھو آپ کو بہت بڑا بھرم ہے, کھانا کھانا اسے آپ نے ایک کام مانا, جبکہ یہ ایک کام نہیں ہے, دو کام ہے. ایک تو وہ تھالی کا مال پیٹ میں پہنچنا, اس کو بھی کھانا کھانا کہتے ہیں, اور ایک آتما میں جو کھانے کا بھاپ پیدا ہوتا ہے اسے بھی کھانا کھانا کہتے ہیں. تو وہ تھالی والا جو معاملہ ہے وہ تو شریر کھاتا ہے, اور جو بھاپ والا معاملہ ہے اسے آتما کھاتا ہے. دو کھانے ہیں, تم نے ایک کھانا سمجھا کیا؟ آتما نہیں کھاتا, ایسا ہو گیا نا, شریر کھاتا. تو وہ ایک بھائی جیت گیا, کون؟ جو آتما نہیں کھاتا کہتا تھا اور شریر کھاتا کہتا تھا, کیوں؟ اور یہ ہار گیا تو ایک دم بولا کہ نہیں صاحب, یدی یہ کھانا آتما نہیں کھاتا ہے تو اتنا کھانا لاکھوں ٹن وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ سمجھنا, سمجھنا, کھانا جاتا کہاں ہے پھر؟ اس وقت اس زمانے کی بات ہے جب جگجیون رام کھادیہ منتری تھے. اب آپ سمجھ لو, تو میں نے کہا بھائی صاحب یہ کھانا کہاں چلا جاتا ہے؟ یعنی تمہارا یہ پرشن ہو تو تمہیں یہ پرشن جگجیون رام سے کرنا چاہیے, یہ اس کی پرابلم ہے, میرے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ لیکن تمہارا اگلا پرشن کھانے کے بارے میں کیوں ہوا؟ تمہارا اگلا پرشن یہ کیوں نہیں ہوا کہ آتما نہیں کھاتا ہے تو آتما کیا کرتا ہے؟ تم آتمارتھی ہو کہ بھوجنارتھی ہو, بولو کیوں؟ تم آتمارتھی ہو کہ بھوجنارتھی ہو, یہ بتاؤ. ہم تو آتمارتھیوں کو جواب دیتے ہیں, بھوجنارتھیوں کو نہیں. کہ دیو لالی میں شیور ہے, آپ سب لوگ پدھارنا, ایسا کہنا. تو ایک آدمی تو پوچھے کہ صاحب وہاں ٹھہرنے کی کھانے پینے کی ویوستھا ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیسی ہوگی, کیوں؟ تو ایک آدمی پوچھے کائے کی کلاسیں چلیں گی, کون پڑھائے گا, کیا کیا پڑھایا جائے گا, دونوں میں فرق ہے نا. جو بھوجن کی بات پوچھے وہ بھوجنارتھی ہے, اور جو پڑھائی کی بات پوچھے وہ ودیارتھی ہے, کیوں؟ جو کام دو ہی ہوں گے, یہاں ہوا میں نہیں زندہ رہے گی. جتنے لوگ آئے ہیں بے کھانا بھی کھائیں گے, کیوں؟ بنا کھانا کھائے نہیں رہیں گے, اور کلاسوں میں بھی بیٹھیں گے. لیکن تیرے دماغ میں فکر کھانے کی ہے کہ تیرے دماغ میں فکر وشے کی ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ آتما کیا کرتا ہے یہ کیوں نہیں پوچھتا ہے؟ ایسے ہی ہم یہاں کہتے ہیں کہ وہ پدگل کا کیا, آتما کیا کرتا ہے, کند کند گئی سمسیا یہ ہے. اس لیے انہوں نے 81, 82 اور 83 میں گاتا میں کیا جواب دیا, آتما کرتا آتما کو بھوکتا. کیا بولو؟ پڑھو 83, 84, 85, 86 نہیں, ہاں 83, 84, 85 ایک سیکنڈ 81. آچاری تو ہم کہتے ہیں ہماری سمسیا تو یہ ہے کہ آتما کیا کرتا ہے, اور پدگل کیا کرتا ہے, اور پدگل کرم کو کون کر جاتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے, وہ کیسا ہوتا ہے. اس چکر میں پڑنا ہو تو کرونا نہیں اوپ کے والوں کے پاس جاؤ. کیوں؟ آتما کیا کرتا ہے؟ انہوں نے تو نشکرش یہ دیا کہ ہم نے ساری رامائن آپ کو اس لیے سنائی کہ آتما کیا کرتا ہے. ایسا ہوا نا کہ رات بھر رامائن سنی, پنڈت جی نے سنائی, اور صبح ایک بہن بولی, بڈھی اما تھی بالکل بیچاری بنا پڑھی لکھی, بولی پنڈت جی ایک بات تو بتاؤ, کیا کہ رامائن تو سنائی اور ہم نے سنی کہ ان میں راکشس کون تھا, رام کے رامن کیا. تو پنڈت جی نے ماتھا کوٹ لیا کہ میں رات بھر سمجھایا اور اسے یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ راکشس کون تھا, رام کا تھا کہ رامن. تو آپ کو وہ لگتا نا مہا مورکھ ہوگی, اس سے زیادہ مورکھ اس دنیا میں کوئی آدمی ہو نہیں سکتا, وہ اما اتنی مورکھ ہوگی, یہی لگتا کہ نہیں لگتا آپ کو؟ بولو لگتا. لیکن میں کہتا ہوں اس جیسا بدھیمان وہاں نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ جو اس نے رامائن پڑھی تو شروع سے انت تک یہ دیکھا کہ سورپنکھا کے پاس رامن کی بہن آئی. کیوں؟ اس نے کوئی ڈنڈا نہیں مارا تھا, ہاتھ جوڑ کے پرارتھنا کی تھی کہ میں آپ سے اپنی شادی کرنا چاہتی ہوں, یہ کوئی اپرادھ نہیں ہے. اور لکشمن نے اس کی ناک کاٹ لی, یہ کس کے کام ہے؟ اور وہ ہرن کر لے گئے سیتا کا, کیونکہ اسے دل سے چاہتا تھا, ہاتھ پیر جوڑتا رہا لیکن ہاتھ نہیں لگایا. اور یہ پرمان ہے سیتا کی اگنی پریکشا سے کہ رامن کے گھر میں بھی 6 مہینہ رہ کر, اور رامن سے بڑا کوئی نہیں ہے, 3 کھنڈ کا مالک تھا وہ, سب چکرورتی سمراٹ تھا, اب چکرورتی تھا نا, کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا, پھر بھی وہ سرکشت رہی. آپ کہتے ہو وہ نالائق تھا, میں کہتا ہوں کہ مجھے رام کا گھر نہیں, مجھے رامن کا گھر دیکھنا ہے. بتاؤ سارے ہندوستان میں چل کے کوئی کہ جس کے گھر میں کوئی پرائی عورت جسے وہ جی جان سے چاہتا ہو 6 مہینہ تک رہے, کیوں, اور کوئی بھی اس کا پکش لینے والا نہیں ہو, کوئی اسے بھے نہیں ہو, اور اس کے گھر میں اس کی عزت سرکشت رہ جائے, ایسا گھر مجھے چاہیے دیکھنا ہے. ہے کوئی ہے؟ تو رامن کا گھر نہیں ہے. اب ایک نہیں, ایسے 25 باتیں بتا سکتا ہوں اور آگے. کیوں؟ تو وہ جو دکھ سنائی ہے کہانی تم نے, اس میں سارے غلط کام تو مجھے ادھر سوتے دکھے, اور ادھر سے تو ایک بھی غلط کام نہیں ہوا. اس کے بھائی کو پھوڑ لیا, لنکا کا راج دینے کے لوگ کے دے کر پھوڑ لیا. کیوں؟ طے ہو گیا تھا کہ استان کا میں لڑائی نہیں ہوگی, ایک دوسرے سب لوگ دھرم کا آچرن کریں گے. اور بےچارا وہ سنتاپور مندر میں, سانتناتھ کے مندر میں اپنا استان کا پرو منا رہا تھا, تو ان لوگوں نے جا کر وہاں بکھن کیا. اور مندودری مایا بھائی سہی اس کے بال پکڑ کے ایسا گھمایا اور کہا کہ ہم تیری مندودری کو لے جا رہے ہیں, تیری طاقت ہو تو بچا لے. کیوں؟ ایسا اس نے تو نہیں کیا, سیتا کے بال پکڑ کے گھمایا تو نہیں تھا, ایسا نہ نکلی سیتا کو بھی نہیں گھمایا تھا. کیوں؟ نے جو رامائن سن کر بڈھی اما کے دماغ میں آیا تھا, اس سندر میں وہ قسم کتنا بڑا سارتھک ہے, اور ہم اسے مورکھتا کی بات سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہم نے بھی رامائن سمے کو سمجھے ہی نہیں. ایسا چنتن نہیں تھا, اس کو تھا تو ایسے چنتن والی اما ہی بدھیمان کہلائی. کہ یہ سمے سارے یہاں تک ہم پڑھاتے آئے, اور تم پوچھتا ہے کہ اس پتر کرم کا کرتا کون ہے, پتر کرم کا کرتا کون ہے؟ کیوں؟ اب تیرے کو کیا کہیں؟ آچاری تو کہتے ہیں آتما تم جان لو ہے بھبھ جن, ہے نا, ہے بھبھ جن تم جان لو پرمارتھ سے ہے آتما, اور نج بھاو کو کرتا تتا نج بھاو کو ہی بھوگتا. کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ موٹن جی آپ کے پرشن کا جواب ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا. تو خودگر کرنے کی بات تھی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے سمجھا تو صحیح سمجھا. اب آگے کی ایک سمسیا ہے جو اگلی 3 گاتھائیں اپن کو چلانی ہے. یہاں تو پوری पीठ का हुई कि तुम कहते हो कि आत्मा अपने भावों को करता है और भावों को ही भोगता है और परद्रव्य में कुछ करता भोगता आत्मा है ही नहीं। लेकिन हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि आत्मा राग द्वेष भावों का करता है, आत्मा पर पदार्थों का करता है। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीते, पूरा प्रथमान योग पढ़ा तो सारा पर का ही करते सब लोग दिखाई दिए। एक प्रमाण कहा दें, हम कौन सी ग्रंथ में लिखा कब पढ़ा, एक भी कहानी इसने ये किया इसने ये किया उसने ये किया उसने ये किया। तुम कहते कोई किसी को मार जला नहीं सकता है, बंधनकार में गाथाएं आती है, आयु छय से मरने हो यह बात जिन वर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु छय से मरने हो यह बात जिन वर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु है। और या तो मारा ही मारा है, उसने इसको मारा उसने उसको मारा, राम ने रावण को मारा, मारा ही मारा है, क्यों कौन सा पेज बताया तुमने। हम तो कहते हैं कोई भी किताब ऐसी लाओ और आंख मीच के ऐसी खोलो, उस किताब में वहां पर इसने ये किया उसने ये किया मिल जाएगा। ये तो प्रथमान योग की कहानी हो गई ना। फिर चरणान योग में आलू मत खाओ तो जीव मरेंगे, जीवों को मारना अच्छा नहीं है, जीव दया सबसे बड़ा धर्म है, जीवों को बचाओ। क्यों गुजरात की तो खास बात है क्या नहीं, चरणान योग में मारो नहीं बचाओ मारो नहीं बचाओ। इसका मतलब हम मार सकते हैं बता सकते हैं, मारते हैं तब तो कह रहे मारो मत, क्यों करुणान योग में बड़ा है, करुणान योग में तो लिखा ही है आत्मा ऐसा करता ऐसा होता ऐसा करता ऐसा होता ऐसा होता। अब इतना दिनवाणी में हम यही दिन रात पढ़ते हैं और तुम कहते हो गए निक्की हो गया कि आत्मा प्रभाव का करता भोगता नहीं है, निज भाव को करता और निज भाव को ही भोगता है। यहां तक अपन आ गए ना, तो शिष्य का प्रश्न है कि ऐसा कैसे हो सकता, तो उसका उत्तर अब अगली गाथा में दिया जा रहा है। अनेक विध पुद्गल कर्म को भोग आत्मा, ये जो जिनवाणी में कहा है सर्वत्र ये सब व्यवहार मय का कथन है। ये दुनिया कहती है वो व्यवहार मय का कथन नहीं है, क्योंकि नये तो ज्ञानी को होते हैं, वो तो व्यवहाराभास है। क्यों जर्मनी में जो कथन किया है और ज्ञानी जन भी ऐसा कहते देखे जाते हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो ऐसा करो ऐसा मत करो, सब जने समय पे आ जाएं, लेट नहीं आना चाहिए, कोई यहाँ आवाज नहीं करे, बीच में जगह नहीं छोड़े, इसलिए बोलते हैं बराबर। क्यों तो दिन ना रात तो करो करो की भाषा करते हैं और यहाँ कहते हो कि आत्मा करता नहीं है। शास्त्र में भी भरे पड़े हैं शास्त्र के प्रभाव के करने की इस उपदेश की भाषा से, तो वो कहते हैं कि जिनवाणी ने कहा नहीं कहा ऐसा वो नहीं कहते। क्यों भाई एक छोटा सा प्रश्न है, ऋषभ देव के कितने पुत्र थे, खजाना नहीं भगवान ऋषभ देव के नहीं पूछ रहा हूं, राजा ऋषभ देव के अब तो चिंता नहीं है, कितने थे, 100 थे, 100 थे ना, अभी कौन से नए का कहता थे ना, तुम कहते कोई किसी का है ही नहीं, भगवान ऋषभदेव के तो थे ही, राजा ऋषभदेव के थे, लेकिन वो भी विभाग में कई कथन है ना, और जिनवाणी में है, कोई आप गलती नहीं कर रहे, घबराना नहीं, कदम कदम पर है, कदम कदम पर है। ऐसा तो है लेकिन गुरुदेव श्री की वाणी से, गुरुदेव श्री की वाणी सुन लो, सब निकालो क्यों? अब मेरे कभी किसी प्रसंग में किसी नेता को नहीं बुलाना। कौन किसको बुलाता है? कौन किसको बुलाता है? बुलाने से कौन आता है? बुलाने से आते होते राजधानी शास्त्री पहले आ जाते। बिना बुलाए आते कि नहीं आते, तो उनके भी वाणी में तो ये व्यवहार न का कथन आता है। ये कोई ऐसी इसको तुम ऐसी हवा में नहीं उड़ा सकते कि है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अरे व्यवहार में झूठा है ऐसा कहने से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? ऐसा कहते ही भाई किस किस को तुम्हें झूठा मानना पड़ेगा इसकी कल्पना तुम्हें है? ऋषभ देव के स्वपुत्र थे ये भी झूठा है। क्यों मानने में अपने स्त्री पुत्र बाल बच्चे माँ बाप थे ये भी झूठा है? क्यों? फिर क्या क्या मानू मैंने इस व्यवहार नये के आधार पर आपने क्या क्या मान रखा है वो सब झूठा हो जाएगा। तो क्या है कि व्यवहार में प्रयोजन पूर्णता सत्य है और प्रयोजन के बाहर असत्य है। इसे कथनचित सत्यार्थ बोलते हैं। कथनचित माने बस एक किसी अपेक्षा, इस देह के संयोग की अपेक्षा बात करो, वर्तमान में जो व्यवहार है उसकी अपेक्षा बात करो तो थे, पर उतनी ही इसके आगे तुम ले जाओगे तो वो असत्याप हो जाएगा। वो प्रयोजन पूरा करो, तो वो प्रयोजन कोई साधारण नहीं है। मालूम कितना बड़ा प्रयोजन है कि यदि हमें इस कौन सा व्यवहार सबसे पहले सबसे रद्दी हल्का जिसे कहते उसको लेते हैं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव सारी दुनिया ये अपनी है और अपनी मानना, ये इसको बोलते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। देखो अपने यहाँ ये अपने हैं ऐसा भी कहते हैं और कोई किसी का नहीं है स्त्री पुत्र सब धोखे के हैं ये भी कहते के नहीं कहते, और वहां कहीं आपको कोई झगड़ा खड़ा नहीं हुआ। बारह भावना पढ़ते हैं तो आपको कोई विकल्प खड़ा नहीं हुआ कि ऐसा तो कह रहे दो बातें एक साथ क्यों कह रहे कर ले नहीं कारी। तो ये क्यों है कि यदि इस व्यवहार नये को नहीं माने और सर्वथा झूठा कहें तो क्या क्या दिक्कत खड़ी हो जाएगी? पहले तो प्रसमान योग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, पहले सब इसकी छुट्टी करो, हम ऋषभ देव के बेटे थे कि नहीं थे ख्याल में आई ना, वो सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। इसमें ये वो तो है नहीं, वो तो व्यवहार नये से है मैंने व्यवहार नये झूठा है। दूसरा चरणान योग साफ हो जाएगा। चरणान योग साफ कैसे हो जाएगा बता अंदर बता है? ये तो बताया ही है अभी, तो अपन तीसरे नंबर पे आएगा। ये दूसरे नंबर पर ये स्वस्त्री है और ये परस्त्री है, ये नए कौन से भेद में से है? तो ये ब्रह्मचर्यान व्रत खत्म हो जाएगा, क्यों कोई स्वस्त्री होगी ही नहीं, सब पर ही पर है ना निश्चय ऐसे। तो ब्रह्मचर्यान व्रत में क्या होता है? स्वस्त्री को रखना और परस्त्री को छोड़ना। तो ये ब्रह्मचर्यान व्रत नहीं बनेगा फिर, तो क्या दिक्कत हो जाएगी कि या तो सब असंयमी हो जाएंगे पंचम गुण स्थान नहीं बनेगा, और या सब संयमी हो जाएंगे। स्वस्त्री को परस्त्री जैसा मानोगे तो साधु हो जाओगे, और परस्त्री को स्वस्त्री जैसा मानोगे तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली हो जाओगे। ये मनुष्य को पशुओं से जुदा कराने वाला न है कि इतनी महिलाओं में ये मेरी पत्नी है और बाकी मेरी पत्नी है, मेरी माँ बहन और बेटी जैसी हैं। बोलो ये सदाचार पसंद है हमें कि नहीं, और ये ब्रह्मचर्यान व्रत है कि नहीं? तो चरणान योग में विधन है। अभी देखो स्त्री पुत्र मकान ये सारा रुपया पैसा अपना नहीं है ना, मकान अपना नहीं है ना, फिर भी जिस मकान में अपन ने रजिस्ट्री कराई है नगर नारायण दिए हैं वो मकान अपना है, और उसके पड़ोसी का मकान अपना नहीं है, ये भेद कौन से नए से? यदि क्योंकि निश्चय से तो कोई भी मकान अपना नहीं है, सब धर्मशाला है। तो परिग्रह परमाणु में खत्म हो जाएगा। क्यों? अचौर्याणु में खत्म हो जाएगा। क्यों? कोई परपदार्थ का ग्रहण आत्मा ने आज तक किया ही नहीं है, क्योंकि ये त्यागोपादान शून्य तो शक्ति से युक्त है, न त्याग करता न ग्रहण करता है। मेरे पास चोरी का अपराध जाएगा, चरणन योग साफ हो जाएगा। ये कौन सा चौथा नंबर का व्यवहार है? जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहता है, इसे यदि सर्वथा झूठा कहोगे कल जाए ना, तो अनुवृत्त भी नहीं बनेंगे, तो चरणन योग गया और करुणन योग खत्म हो जाएगा। जो चीज हमारे कर्म के उदय से हमें प्राप्त हुई है वो अपनी है। मानते कि नहीं मानते? लोक में हम किन किन चीजों को, हमारे पुण्यकर्म का उदय इसमें है। वो पुण्यकर्म का, पुण्यकर्म किसका? तुम्हारा। तुम्हारे पुण्यकर्म के उदय से है ना, तो मेरे पुण्य का कर्म का उदय तुम्हारा नहीं है ना, तो तुमने भी दो भेद कह दिए कर्म में भी, एक तुम्हारा और एक हमारा, जबकि दो ही हमारे हैं ही नहीं। तो वो कहने का मतलब, वो व्यवहार इतना कमजोर नहीं है कि तुम्हारी फूक मारने से उड़ जाएगा। उड़ जाता होता तो कभी का उड़ गया होता। तुम नग्न दिगंबर हो जाओगे उसके बाद भी ये व्यवहार चलेगा। ये मेरा शिष्य, ये मेरे गुरु, क्यों नमस्कार करें? हे कुंद कुंद गुरु, तुम नहीं होते तो हम अनात्मा को तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होता? अपने गुरु को नमस्कार करना, ये बोलिए। तो गुरु शिष्य भी नहीं होता, पहला व्यवहार। दूसरा व्यवहार कौन सा? दूसरा जो शरीर को अपना कहता है, उसका नाम शास्त्रीय भाषा में अनुपचरित असदरूद व्यवहार। तो वो फिर समय सार में लिखा है 46वीं गाथा की टीका में कि भस्म को मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही फिर जीवों को मसल देने से हिंसा नहीं होगी, फिर जीवों को मसल देने से। वो भी कोई इतना नहीं है। मैंने कहा था कि कीड़ी में भी जीव है, इसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है, ये जीव बताने से क्या फायदा? कि ध्यान करने वाले जीव नहीं है ये, अपनापन करने वाले जीव नहीं है। इन्हें तुम अजीब जैसा मत मानो, इनके साथ करुणा का व्यवहार करो, इनके साथ कोई असद व्यवहार मत करो, इसके लिए उन्हें जीव बताया। ये भी है। और राग तो मेरा है ही नहीं, और राग का कर्ता तो अज्ञानी होता है, तो तू कौन है? हम दृष्टि हो ना, वो तो बहुत दूर की बात है, बोलो क्या? तो फिर तुम दृष्टि नहीं हो तो फिर क्यों, क्या होगी? बोलो क्यों? अज्ञानी किसे कहते हैं? सभी बोलता है, कोई आदमी अपने को सम्मदृष्टि मानने को तैयार नहीं है और अपने को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है। मैं तो सब समझता हूं, तू सब समझता है तो सर्वज्ञ है। जो सब जानता है उसी को तो सर्वज्ञ कहते हैं, है कि नहीं कहते? बोलिए। कैसी विचित्र स्थिति है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन जो सारा व्यवहार चल रहा है, तो ये कहते हैं कि वो व्यवहार नय का कथन है, निर्माणी में है और है, समझे ना? और फिर अंतिम अंतिम चोट लगाता हूं कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है और आत्मा में चारित्र है, ऐसा मानना भी संभव नहीं होगा। व्यवहारेण बदस्वदी प्राणिश्चे चरित्र दर्शनम प्राणम नवीराणम न चरित्रम जाने गो शुद्धो। आत्मा न ज्ञान है, न दर्शन है, न चरित्र। नवीराणम माने आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा में ज्ञान नहीं है, ऐसी भाषा नहीं है। वहां कहते आत्मा ज्ञानम, आत्मा ज्ञान है, यहां कहते आत्मा ज्ञान नहीं है। बोलो, ये व्यवहार का निषेध है। अब आत्मा में ज्ञान नहीं है मानना है? बोलो, ये भी नहीं मान सकोगे कि आत्मा ज्ञान नहीं है। ख्याल में है ना। इसलिए कहते भाई कि ये व्यवहार है। क्या गाथा पढ़ने पड़ी ना, कौन सी? अनेक विध बुध गल कर्म को आप कहते आप व्यवहार की इतनी स्थापना कर रहे हैं। अरे भाई उसे खड़ा नहीं करेंगे, व्यवहार की गाथा है तो जब इसकी बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? ये गाथा व्यवहार नहीं की है ना, समय सार की है ना। क्यों? तो समय सार की गाथा का अर्थ नहीं करना, समय सार की गाथा का अर्थ नहीं समझाना। क्यों? समय सार ने कहा कि ये व्यवहार नय का कथन है और जहां 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 ऐसा लिखा हो तो घबराना नहीं, ये समझ लेना व्यवहार नय का कथन है। और फिर डिटेल में जा सकते हो तो कौन से व्यवहार नय का कथन है, उपचरित का, अनुपचरित का, सद्भूत का, असद्भूत का, लगा लेना। और नहीं लगा सको तो नहीं लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस समझ लो कि एक बात जो व्यवहार नय का कथन है माने ये दूसरों की बात है नहीं, ये अपनी जिनवाणी में है, अपनी जिनवाणी में व्यवहार नय से कथन किया गया है। फिर शिष्य पूछ सकता है कि जब ये है ही नहीं अपने तो व्यवहार नय ने अपना क्यों कहता है, है ना? जब है ही नहीं अपने तो व्यवहार में इन्हें अपने क्यों कहता है, तो जिनवाणी बताएगी कि इस प्रयोजन से कहता है। गुरुदेव श्री सार की चरणान योग की शुरू की गाथाएं पढ़ते थे तो कितनी भावुकता से कहते थे कि अपने माँ बाप के पास गया जो दीक्षा लेने वाला, कि हे माँ तू मेरी माँ नहीं है। तो वो कहते हैं कि आप कहते हैं माँ को माँ बने का निषेध की बात है, तो गुरुदेव कहते थे कि नहीं, पहले उसने हे माँ कहा ना, ये व्यवहार नय की स्थापना की। क्यों? और उसे ऐसा नहीं है कि उसने व्यवहार नय को माँ किसी रूप में भी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वो दूसरे की माँ बहन से तो बात ही नहीं करता। वो दीक्षा लेने के लिए उसे दूसरे की कोई किसी दूसरी महिला से बात करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो उसके उधर से उसका शरीर का जन्म संयोग हुआ था, इसका ज्ञान उसे है, और लोक में जो उसकी मर्यादा है और जो लोक में उसकी महिमा है उसको वो स्वीकार कर रहे, जब तो हे माँ कह रहे। तो फिर ये कहती है कि तू मेरी माँ वास्तव में नहीं है, वो दूसरा नय लगाया। क्यों? कि माँ और बेटे का जो राग होता है वो मेरा टूट गया है। ऐसी बात कहते कि नहीं कहते हैं? तो उसे व्यवहार को खड़ा तो होने दो, तुम तो खड़े ही नहीं होने देते हो। आप जानते हैं पद्म पुराण पढ़ा कभी? हम तो गुरुदेव के शिष्य हैं, हमें पद्म पुराण से क्या लेना देना? 700 पेज का पद्म पुराण, इसमें शुरू से 400 पेज में रावण का वर्णन है, नाम राम का नाम तक नहीं आया। पढ़ना कभी है? कभी कभी तो ऐसा भ्रम होता है कि ये राम का कहानी है कि रावण की, और रावण की कहानी बहुत महिमा गाई है, कोई गालियां दे दे के नहीं गाई है। आखिर वो त्रिखंडी राजा था, अर्ध चक्रवर्ती था, और कैसे कैसे अर्ध चक्रवर्ती बना, फिर किन को जीता, राजा इंद्र को कैसे जीता, वो सारी बातें आई कि नहीं आई? और आप जानते हैं ये राम राम की क्या हैसियत थी उस वक्त? राम के पिताजी बाप के नजर अच्छा नहीं लगता है, ये बात तो वही है, उन्हीं के अंतर्गत राजा थे। आप जानते हो अर्ध चक्रवर्ती के अंतर्गत 16,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं, उन 16,000 में एक दशरथ थे और एक जनक थे। अब समझ लो रावण के सामने उनकी क्या हैसियत थी, रावण का राज्य के अंतर्गत तो वो थे ही, लेकिन उनका 16,000वां हिस्सा उनके पास था, वो भी पूरी स्वतंत्रता से नहीं, इनकी आज्ञा से। है कितना समझे ना, सारे हिंदुस्तान के 16,000 हिस्से करो, उसमें 1,001 हिस्से के व्यवस्थापक दशरथ थे, राजा नहीं, राजा तो रावण था, उस जमीन का भी क्या है शक्ति मान। और फिर क्या हुआ, किसी ज्योतिषी ने रावण को बता दिया कि तुम्हारा मेरा मरण कैसे होगा, कि दशरथ के बेटे और जनक की पुत्री इन दो के निमित्त से तेरा मरण होगा, निमित्त से वे मारेंगे ऐसा कुछ नहीं, क्या तो चलो खत्म कर दो दोनों, उन्हें पूछना थोड़ी था, लड़ाई लड़ने की जरूरत थोड़ी थी, युद्ध की जरूरत थोड़ी थी, फिर एक ऑर्डर भेजता और गए आदमी और गिरफ्तार कर लेते, उन्हें पता चल गया तो जाके छिप गए, वहां आदेश दे दिया कि ने मार दो, तो उन्होंने कहते दशरथ का ये मोम का पुतला बनाया और उसे सिंहासन से बैठा दिया और ये छिप गए, वे सिपाही आए उसको मारा, खून की नदियां बह गईं और चले गए कि मार डाला, छिपते 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 क्या उसका वर्णन है। और फिर राम का फिर ये तो अच्छी बात नहीं है, अरे भाई रावण को इतना ताकतवर नहीं बताएं तो ऐसे राम को राम ने मारा जीता, राम की महिमा कहां से आई, राम की महिमा बतानी हो तो उसे मजबूत बताना पड़ेगा, कितना ताकतवर था, तो एक सिद्धी सा रोता रोता सा लड़का था उसको राम ने मारा, तो राम की क्या महिमा, भारत केसरी को जीते तो मैं भारत केसरी बनू के साधारण से पहलवान को जीतूं तो भारत केसरी बनू, बोलो जो पहले से भारत केसरी है उसको जीतना पड़ेगा ना, तो ये व्यवहार नए को बेचारे को खड़ा तो होने दो, अरे उसमें तो 400 पेज है रावण के वर्णन में, लेकिन इस जिनवाणी में व्यवहार नए के वर्णन में मान लो 1,00,000 पेज हैं, तो 1,000 पेज छोड़ दो, 99,000 पेज व्यवहार नए के वर्णन में है, तीन अभियोग आ गए ना पूरे, और अध्यात्म भी छोड़ कहां पता, समय सार को भी झक मार के कहना ही पड़ा ना इस गाथा में, एक व्यवहार की गाथा रखनी पड़ी कि नहीं रखनी पड़ी, कई गाथाएं है ना पूरे व्यवहार की, इससे भी छुट्टी कहां ले पाए। तो कहते हैं पहले व्यवहार की स्थापना, अब देखो और फिर व्यवहार का निषेध, अब निषेध क्यों, अब उसकी बात बाद में करते हैं, व्यवहार की स्थापना के बाद व्यवहार का निषेध तो करना, लेकिन वो स्थापना की थी ना वो किसी प्रयोजन से की थी, वो प्रयोजन उपलब्ध हो गया हो तो तब करना, जैसे अपन ने गेहूं बोया था अब इतना बढ़िया अनाज था और जबरदस्ती उसे अपन ने घास बना दिया, या जमीन में बो दिया तो क्या हो गया, घास बन गया ना, पेड़ बन गया, पेड़ की जड़ बन गई, गेहूं तो गायब ही है, यानी अपन ने इतने बढ़िया गेहूं को घास बना दिया और घास बनाने के बाद उसे पाला पोसा, पानी से सिंचाई करी, बाड़ लगाई, कोई उसे खाना जाए उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करी, क्यों अपन चौकीदार बन के खड़े रहे, कितनी सेवा करी, और जब वो गेहूं का दाना पक गया और पक के उसमें से अपन ने निकाल के अपने कब्जे में नहीं आ गया, तब तक संभाल करना उसकी, और फिर तुम्हारा गेहूं कब्जे में आ गया फिर तो तुम्हें चाहो तो छोड़ दो, कौन मना करता है, क्यों उसके पहले नहीं छोड़ना, क्योंकि जिस गेहूं के 1 दाने के 100 दाने करने थे ना, वे 100 दाने कब्जे में आ जाए तब, ये व्यवहार में भी ऐसा ही है कि इसे तुम तब छोड़ना कि जब इससे सीधे उस निश्चय में तुम पहुंच जाओ, तुम छोड़ना क्या, छूटेगा जब, तुम्हारे हाथ में है क्या, ये छोड़ने की तो उपदेश की भाषा है, तत्व की भाषा नहीं है, उपदेश की भाषा सत्य नहीं होती। जो हम कर ही नहीं सकते उसे करने को कहते हैं, क्या उपदेश की भाषा में क्या है? क्यों जो कर नहीं सकते उसे करने को कहते हैं, जिससे करना हम बंद नहीं कर सकते उसे बंद करने की कहते हैं। और तो और, केस लुंच करो और ये छुरी से मत बनाना बाल, ये भी व्यवहार न्याय का कथन है। ये मुनि धर्म है कि नहीं है? बोलो, 28 मुनियों में नाम आता कि नहीं आता है? क्यों किसके केस कौन लौटे कौन बना है? दर दर्द की क्रिया है, उसका कर्ता भगवान आत्मा है ही नहीं तो कहते हैं दीवार ने को थोड़ा खड़ा होने दो, बड़ा होने दो, और फिर उसका निषेध करना कि जो ये कहते थे स्त्री पुत्र मकान जायदाद हैं, ये अपने हैं, उन्हें विशेष मानो ना भी हे माँ। अब ये कहते हैं फिर निषेध करना ही क्यों? जब हम इतना व्यवहार का समर्थन करते हैं तो सामने वाले को पक्ष खड़ा हो जाता है कि इतना इतना उपकारी है, इतना उपयोगी है, तो फिर उसे छोड़ना ही क्यों? क्यों फिर स्त्री पुत्र माँ बाप को छोड़ना ही क्यों? तो इसलिए छोड़ना के लिए दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यही खड़े रह जाओगे। अकेले अकेले नहीं चल पड़े तो यही खड़े रह जाओगे समझे ना? इसलिए छोड़ना, वहां जाने के लिए छोड़ना, समझना। जो विवाहिता पत्नी है उसे मोक्ष में जाने के लिए छोड़ना कोई मना नहीं करेगा, लेकिन दूसरी शादी करने के लिए छोड़ना क्योंकि दूसरी शादी नहीं कर सकता इसे तलाक दिए बिना, क्यों वो भी वैसे ही धर्म है, क्यों वो धर्म है तो राग टूटे तो छोड़ना। ये तो राग तेरा बड़ा है, ये राग टूटा नहीं है ना, क्यों? इसलिए कहते हैं, तो गाथा पढ़ी ना अपन के व्यवहार नय का कथन है, ये जान लो भगवान। ये इतनी पूरी इसकी स्थापना करके फिर अगली गाथा में वो बात कहते हैं। हाँ बोलो बोलो भाई।
यदि को बने होगे
अब ये उसकी बात में से इतनी बात कर रहे हैं। वास्तव में तो व्यवहार नहीं की कथा जो है वो 2-5 दिन चलानी चाहिए क्या है? उसकी साधना तो हो, कहाँ कहाँ कैसी कैसी उपदेवता क्यों क्यों जिनवाणी में उसे जगह मिली है, क्या क्या कहा है, क्या क्या एक एक नए के बारीक खोल खोल के। अब वो ये कहते हैं कि जैसे मैंने बोला ना कि भाई जैसे ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मोक्ष में नहीं जाने पाओगे, तो मोक्ष में जाना है तो जो नए इन्हें अपनी कहता है उसे असत्यार्थ मानो, और जो इन्हें अपनी नहीं कहता है उसे सत्यार्थ मानो। ख्याल नहीं ना? वो कहते देखो अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा। अब इस प्रश्न खड़ा कर रहे, ऊपर तो कहते हैं अपने ही कह रहे करे भोग, और अब कहते हैं यदि करे भोगे आत्मा वास्तव में तो दुक्रियावादी दुक्रिया अव्यतिरिक्त हो सम्मत न जो जिन धर्म में। अब जरा नया विषय चलेगा, थोड़ा कठिन होगा, घबराना नहीं, आएगा समझ में। समझ में आएगा। कहते वो दुख क्रियावादी हो जाएगा। ये दुख क्रियावादी क्या होता है कि दो द्रव्य की क्रियाओं को एक आदमी करे, एक करे, उसको बोलते हैं दुख क्रियावादी। अभी विस्तार से समझाएंगे, दो तीन दिन लगेंगे, चिंता मत करो, अभी थोड़ा थोड़ा समझो। एक आदमी बोला कि साहब मेरे को बहुत जरूरी काम से जाना है तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो अपने साहब को जाके उसने कहा कि छुट्टी चाहिए, तो साहब ने कहा तुझे मालूम नहीं है इन दोनों अपना काम डबल हो जाता है, 31 मार्च आ रही है, ये सारे बैंक के सारे काम निपटाने पड़ेंगे, सारे लोग आएंगे, 31 मार्च के पहले किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। ये तो वो जानता था कि ये जवाब मिलने वाला है, तो वो अपने साथी को लेके गया, जो साथ का क्लर्क था ना, तो ये तो नहीं बोले, वो बोले कि बाबूजी इसे दे दो, बहुत जरूरी काम है, मेरी पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसे आप छुट्टी दे दो। कैसी बात करता है छुट्टी दे दे, काम कौन करेगा, मैं करूंगा, कौन निपटाएगा इस काम को, कि आप ये छुट्टी दे दो, इसका काम मैं निपटाऊंगा। क्या इसका काम क्या निपटा, मैं निपटा लूंगा। तो बोले अच्छा तू निपटा लेगा, तेरा काम कौन करेगा, क्या बना नहीं, तू इसका काम निपटाएगा तो तेरा कौन करेगा, कि साहब मैं अपना भी निपटा लूंगा, वो इसका भी निपटा लूंगा, तो फिर रात को आएगा 8 घंटा, नहीं 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 मैं 8 ही घंटे में निपटा लूंगा। बेवकूफ बनाता है, हमने बहुत बड़ी गलती की, इसको छुट्टी देते हैं परमानेंट, क्योंकि तुम जब दो इतना काम निपटा सकते हो तो हम दो आदमी क्यों रखेंगे, डबल खर्चा क्यों बांधेंगे। इसका मतलब ये है कि तुम 4 घंटा खाली बैठते हो और 4 घंटा काम करते हो, तो सच्ची बात है कि नहीं, एक आदमी दूसरे आदमी का काम निपटा सकता है, क्यों कि साहब मैं कल कोई तो नहीं करूंगा, साहब कोई कैसे हो सकता, अब इतने लोग आपके नाम से बुलाए सब आ गए हैं, नहीं नहीं वो अभय जी निपटा देंगे मेरा काम, ऐसा अभय जी निपटा लेते हो तो तुम्हें बुलाते ही कौन है, अभय जी अपना निपटाएंगे, क्यों अभी अभय जी आपका निपटाएंगे तो अभय जी का कौन निपटाएगा, तो शांति जी निपटाएंगे तो शांति जी का कौन निपटाएगा, ये कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों ये कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी का काम नहीं निपटा सकता, तो ये दुख क्रियावाद है, अपना काम भी करे और पुद्गल का भी करे। तो वो कहते हैं आत्मा यदि पुद्गल कर्म को करे तो जो आत्मा का काम है उसे कौन करेगा, और आत्मा जीव और पुद्गल दोनों का काम कर ले तो पुद्गल बेकार हो जाएगा, तो वो बेकार हो जाएगा दूसरा आदमी, उसकी नौकरी जाएगी। हम तो छुट्टी लेने आए थे, तुम तो वो परमानेंट छुट्टी हो जाएगी, समझ लेना, तो वो बेकार हो जाएगा ना, उसका काम कौन करेगा। ये कंप्यूटर से यही तो तकलीफ भरी हुई है, 10 आदमी काम करते थे, एक कंप्यूटर ने निपटा दिया, एक को रखा, 10 की छुट्टी, क्यों मालूम आपको, गवर्नमेंट कहती है भैया तुम्हारे कितने वर्ष रह गए बाकी, कि 2 वर्ष बाकी है, कि 2 वर्ष की तनख्वाह आज ही ले जाओ पूरी और ब्याज कमाना इससे, लेकिन तुम आज छुट्टी करो, क्यों भैया मुझे सीट खाली चाहिए, मैं यहाँ 10 आदमियों को बैठा लूंगा तो 100 आदमी का काम होगा, जमीन की बहुत ज्यादा कमी है, तू 2 वर्ष तक है? काम तो जो करेगा तो करेगा, लेकिन जितनी जगह घेरेगा मुझे वो जगह खाली चाहिए, क्यों दे दिया ऐसा कर करके निपटाया। एक मेरे उद्योगपति हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनने मुझे बताया कारपोरेट जगत में है कि हमने अमेरिका से एक आदमी को 50 लाख रुपया दे करके, दीपक जैन है वहां पर, अपना हिंदुस्तानी है, बुलाया सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि हमारे कारखाने का निरीक्षण करो, देखो सब, और देख के हमें सलाह दो कि हमें क्या करना चाहिए। इस बात के 50 लाख रुपया, वो दीपक जैन अपना हिंदुस्तानी है, अपना प्रश्न सुनने आता है शिकागो में, उसको बुलाया وہ تین دن تک چار دن تک میں ساری یہ کری اور 50 لاکھ روپے میں صلاح کیا دی سن لی ہے. 50 لاکھ کی صلاح مطلب تو نہیں سنا ہوا, تو اسے کوئی 50 لاکھ کر دے گا؟ سنا بھائی جی, سنی آپ نے؟ آپ دیپک جین کو تو جانتے ہوں گے, نام تو سنا ہوگا. میرے پتو نے بتایا, تین دن سے سن رہا تھا, میں تو جانتا نہیں تھا اس کا نام, سے نام تو سن رکھا تھا. تو اس نے آ کر کہ ڈاکٹر صاحب میں دیپک جین ہوں. میں اچھا اچھا تم دیپک جین ہو, اچھا تو وہ کیا کہا اس نے, 50 برس کی عمر کے بعد کے جتنے کرمچاری ہیں انہیں آن کا کسی قیمت پر چھٹی کرو. ایک 50 برس سے اوپر والے کو ایک کو نہیں رکھنا. وہ 10 سال کی تنخواہ مانگے 10 سال کی تنخواہ دے دو, کیسے بھی یہ 50 سال کے اوپر والوں کی چھٹی کرو, تمہارا کارخانہ ایون چلنا نہیں. وہی ہے ایک ایک آدمی کی جگہ کو 10 آدمی گھیرے بیٹھے, کہتے کرتے ہیں نہیں پرانی ترکیب سے, ہم نے وہی روکڑ وہی لکھنی ہے, ہم نے وہی چرچا کرنا ہے. ہم کہتے کمپیوٹر سے ہو سکتا ہے, کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے ہیں, کسی دوسرے کو آنا نہیں چاہتے ہیں. کمپیوٹر والا آتا ہے اس کو سب مل کے تو کھڑے نہیں رہنا چاہتے ہیں, اور دوسرے کو بھگا دیتے ہیں مار پیٹ کے بدنام کر کر کے. کیوں اسے کام نہیں کر سکتے ہیں؟ سب خالی کرو اور سب نئے لوگوں کو رکھو ایکسپرٹ, اور لگا کمپیوٹرائز کر دو پورا سب چلے گا. کیوں بمبئی کی کپڑا ملوں گا کیا ہوگا؟ پرانی مشینیں تھیں بیکار ہو گئی تھی, کچھ کام ہی نہیں آتی تھی, مزدور ہڑتال کر رہے, دینا نہیں دینا نہیں, نئےوں کو رکھ نہیں سکتے, پرانے کو نکال نہیں سکتے, بھارت کے قانون ایسے بند کرو. ارے جتنی تم کمائی کپڑا گن کے کراؤ گے نا, اتنی کمائی تو یہ زمین میں ہو جائے گی. کیوں اور اس کو لے جاؤ جنگل میں کھولو, 10 سال تک ٹیکس نہیں لگے گا, مفت میں زمین میں رکھی اور نئی نئی کمپنی مشینیں ڈالنا, مالا مال ہو جاؤ گے. کیا کوئی یہاں بیٹھے ہو, ابھی ویسے تو ہو گئے نہیں, ہم کیسے نکالیں؟ بلاؤ دتا صاحب کو, انہیں دو چار کروڑ روپیہ بیٹا ہڑتال کروا دی. ہم کتنا ہی منائیں ماننا نہیں, جس سے ہمیں بھیڑ بند کرنے کا موقع ملے. اور جب تک وہ معاملہ ان مزدوروں کی سمجھ میں آیا تب تک کھیل کلاس ہو گیا تھا. سمجھ گیا نا آپ نے؟ تو یہ کیا ہے, دو دروگ کا کام ایک آدمی کرنے لگے گا تو یہ اویوستھا کھڑی ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں ہر درو اپنا کام کرے, کوئی کسی کا کام نہیں کرے, وہ صحیح ہے. دو درو کا کام ایک درو کرے اس کو دکریا باد کہتے ہیں, اور یدی ایسا کریں گے تو وہ دکریا بادی ہوں گی. اور جین دھرم میں دکریا وادیوں کو متھا دشٹی کہا ہے, جینیندر بھگوان کو یہ بات سویکار نہیں ہے. باقی کی بات کرتے ہیں.